मैं मथुरापुरी पहुंचा एक दिन। माथुर ब्राह्मणों से श्रीमद् भागवत इत्यादि सुना, अभी तक मन से नहीं सुना था। अब भागवत पढ़ते ही श्रीमद् उसमें वृंदावन की महिमा, अपूर्व महिमा और रसों का तारतम्य, साधनों का तारतम्य, ये सब मैंने उसमें सुना, जिससे मुझे नवधा भक्ति, प्रहलाद महाराज जी का चरित्र में नवधा भक्ति, नारद जी के चरित्र से वैष्णव संघ में श्रद्धा, इसी तरह से मैं धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक दिन देखा जी उसी घाट पर, किसी घाट पर अकस्मात मैंने अपने गुरु जी को देखा। हाँ, उनका अंग जैसा का तैसा था, जैसे हमने पहली बार देखा था, आज कितने हजार लाख वर्ष के बाद मैं देख रहा हूँ, क्योंकि क्रम से जा रहे थे ना, इसलिए गुरु जी को देखा वैसे। तो ये भी कह सकते थे जब मैंने भी तो आपको इसी रूप में देख रहा हूँ, गोप कुमार को। जिस समय में गोवर्धन में जन्म हुआ इसके बाद में गुरु जी से भेंट हुई, तब से आज कितने लोग गए और कहाँ कहाँ घूमे और जैसे के तैसे बने हैं, यहाँ तक कि कृष्ण को भी पाया तो वैसे ही, किंतु उनका वो स्वरूप है। कुछ कुछ लोग कहते हैं कि ये शरीर ही भजन के प्रभाव से चेतन बन जाता है, हो सकता है चेतन बन जाए, किंतु वो रखने में जरूर काला कल उठा, बूढ़ा, दाढ़ी पकी हुई और हार्ड लगे हुए, ये शरीर की क्या जरूरत है, क्यों न सुंदर गोपी का या गोपों का, कृष्ण के परिकरों का रूप हो, क्यों ये शरीर को, इसमें तुम्हारी आसक्ति क्यों लगी हुई है, ये भी एक आसक्ति है, इसलिए तुम लोगों का नहीं होगा, इसलिए ये शरीर ही चेतन हो जाएगा भजन। इस सिद्धांत को लेकर के उसी को पकड़े हुए रहने लाभ क्या है, क्यों न सुंदर सुखांत जो भागवत में वर्णन किया गया है, जिसको बिल्लो मंगल जी ने और राधा रस सुधा निधि में कितने सुंदर सरस वर्णन किए हैं। भागवत में गोपियों का चरित्र और उनका सौंदर्य कैसा वर्णन किया है, यशोदा जी बैठी हैं दधि मंथन करने के लिए, शरीर कैसा है, सांवला, अत्यंत सुंदर, जिसको छैल चिकनिया जैसा, दधि मंथन कर रही हैं, घर घर चल रहा है, सूक्ष्म महीन रेशमी वस्त्र पहनी है, कुछ पसीने की बूंदे लगी और वो कुछ भीज गया, अंगों भीतर के अंगों का सौंदर्य बाहर में झांकने लगा ना, जो देखे वही मुक्त हो जाएगा उस सौंदर्य। अरे कृष्ण की मैया है ना, मैया नहीं सुंदरी हो गई तब बेटा कहां से सुंदर हो जाएगा, इसलिए इतनी सुंदरी है, पसीने की बूंदे पर्ल की भांति, मोती की भांति झर रही है, उधर उनका ध्यान ही नहीं है, उनका तो ध्यान है कहाँ, गोविंद दामो धर्मा खरे, बस इसी तरह, इतना सुंदर। कितनी उम्र है उनकी, बूढ़ी तो हो गई हैं, वहां पर कोई बहुत ही यशोदा मैया बूढ़ी नहीं होती, वो प्रौढ़ी की प्रौढ़ रहती है। किसी किसी महिला को चार पांच छह बच्चे हो गए हैं, हमने देखा जी अभी तो ये छोटी सी किशोरी, अभी शादी भी नहीं, तुम्हारी शादी हुई है तो हमको पांच बच्चे हुए हैं, इसी जगत में देखा जाता। तो ऐसा सुंदर क्यों, गोपियों का कैसा सुंदर रूप है, किशोर वयस्क का कैसा वर्णन किया है, कृष्ण भावनामृत इत्यादि में उनका वर्णन पाया जाता है। तो इस सड़े गले शरीर के ही चेतन बनाने के लिए युक्ति तर्क इत्यादि अवलंबन करते हैं, किस लिए, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, नाम के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। तो अब वो नवधा भक्ति का अब मुझे ज्ञान हुआ, पुनः मैं इस बात, हाँ तो गुरु जी का से भेंट हुई, जो ही मैंने उनको प्रणाम किया तो ही वो सर्वज्ञ है ना, बोले तुम यहाँ यहाँ गया था, यहाँ से तुम साथ भेंट हुई, विष्णु के पार्षदों से भेंट हुई और ये बातें हुई, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, जल्दी से तुम्हारे ऊपर में तुम्हारी आशा लता जल्दी से फले फूले, उनके कृपा के प्रभाव से। भागवत तो सभी पढ़ते हैं कि उनके भावों को लेने वाले कितने हैं, कितने हैं, विशेष करके चक्रवर्ती ठाकुर जी का या सनातन गोस्वामी जी गोस्वामी की टीकाओं को ले को ग्रहण करके समझने वाले कितने हैं। अर्थ लगाएंगे अर्थ ही नहीं लगेगा, अर्थ लगाएंगे वो व्याकरण सम्मत, व्याकरण सम्मत अर्थ सब जगह नहीं होगा, वो सब तो भावना के ऊपर में है, वो कृष्ण की लीलाएं चिन्मय है उसके आधार पर है। यदि वैसा कोई भजन करेगा तो भजन के ऊपर में ये सब चीजें प्रतिफलित होगी। इसीलिए कहा गया क्या, भक्ति के द्वारा ही एकमात्र में समझा जाता हूं, न टीकया क्या भक्त्या हम एक आग्राह्य, न बुद्धया न चीकया, बुद्धि और टीका से नहीं, पढ़ करके हम समझ लेंगे, लाख समझोगे नहीं समझोगे, भजन के ऊपर में सब निर्भर करता है। इसलिए उनके कृपा से गुरु जी के कृपा से मैं गुड़ से गुड़ सिद्धांत को मैंने समझा, ऐसा सभी लोग जान सकते हैं। गुरु भी वैसा हो और शिष्य भी वैसा हो तो गुरु की कृपा से वैसे सत शिष्य के हृदय में अत्यंत गुढ़ सिद्धांत प्रवेश कर जाते हैं, समझ जाते हैं। उसी के अनुसार में मैं धीरे धीरे भक्ति जो का अवलंबन करके शुद्ध भक्ति का आचरण करने लगा। मैं अब कृष्ण कीर्तन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं करता, मन ही नहीं लगता, किसी भी काम में मन नहीं लगता, बस कीर्तन करने लगा। क्या कीर्तन करता था, श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हसी जसुदा तनय प्रसीद श्री वल्लभी जीवन राधिकेश श्री वल्लभी जीवन राधिकेश एवं सगानम बहुधा हरयस्तं क्षणं प्रनित्यं क्षणं उद्रुवंच उन्मत्तवत काम मित ततो अहम भ्रमामि देहादिकम अस्मरणम स्वम। अपने को भूल गया, देह गेह सब कुछ भूल गया। पहले तो घर तो था नहीं, कोई शारीरिक आसक्ति थी नहीं, कोई चीज नहीं, अब ये शरीर भी था इसकी भी सब कुछ को उसको भूल करके हाथों को ऊंचा करके जोर जोर से कीर्तन करते हुए कृष्ण को माने पुकार रहे हैं, इस प्रकार से नाम करने लगे। पुकारता कभी नाचने लगता, कभी रोने लगता, कभी उन्मत्त की भांति इधर धर्म होता हुआ अपने की देह को शुद्ध को भूल जाता। जिस समय कृष्ण नाम करता था उस समय देखता था जगत के सबको आकर्षण कर रहे हैं, सबसे अधिक किसको आकर्षण करते हैं, जिसका सबसे हृदय शुद्ध हो, जिसमें अधिक भावना हो, अधिक सुरस हो। ऐसा कौन है, महाभाव वाले उन गोपियों में भी सबसे श्रेष्ठ, ये गोपियां गोपियों में भी अष्ट सखियां उसमें भी उनमें भी श्रीमती राधिका हैं, तो ये कृष्ण कौन, उनको भी आकर्षण करने वाले ये कृष्ण। हरे हरे मैंने यहां उनके भी चित्त को हरण करने वाली अब श्रीमती राधिका, उनके साथ में रमण करने वाले ये राम, उनको पुकारने हा राम नहीं, वहां पर राम या कृष्ण जो पुकार रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम पुकार रहे हैं। इस प्रकार से भूल जाता अपने देह की शुद्ध, सब कुछ भूल गया। एक दिन की बात है, मैं क्या कहूँ, मैं कहना नहीं चाहता किंतु फिर भी विवश होकर के मेरी जीवा खुजला रही है, इसलिए कह रहा, कहना नहीं चाहिए ये सब। एक दिन देखा मैं इसी तरह से कीर्तन कर रहा था, क्या कीर्तन, हाँ, गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हासी जसोदा तमय। बस साथ ही साथ में हमारे प्राणनाथ को देखा मुस्कुराते हुए अधरों पर मुरली विराजित, खूब सुंदर रूप से बंसी पर गान करते हुए अत्यंत करुणा भरी नेत्रों से देखते हुए और प्रकट हो गए। कैसा रूप था? बरहा पीडम नटवर बपू, अत्यंत सुंदर रूप। उस समय उनको दर्शन दे करके मैं उनके पीछे पीछे दौड़ा उनको पकड़ने के लिए, मानो अब पकड़ ही लिया। वो कदम कदम पर पीछे हटने लगे, अब देखा जी एकदम निकट में आ गया। मैं एक कदम के वृक्ष में नीचे ओट में चले गए और न जाने किधर कुंज में इधर उधर चले गए। मैं इस कुंज से उस कुंज, इधर कुंज से कुंज, खोजते 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 विवश हो गया और भी जोर से रोने लग गया। इतने में मैंने देखा जी जमुना जी में मैंने कूद गया, मैं कूद गया या जमुना नदी में मैं गिर गया और उसकी तीव्र धारा में बहने लगा। और देखता हूँ क्या बहते बहते मैं कुछ जमीन से ऊपर उठ रहा हूँ, माने पानी के लेवल से ऊपर उठ रहा हूँ। और न जाने सेकंडों में मैंने देखा जी ये तो स्वर्ग पार हो रहा हूँ, ये पार हो रहा हूँ बैकुंठ, ये सब लोग धाम भोर भुआ सोहा महाजन तपस्त, और सब लोग हाथ जोड़े हुए हैं और मैं उसको देख करके बिरजा को पार करके शिवलोक में भी गया और नीचे वाला ब्रह्मलोक भी पार करके एकदम वहाँ पर पहुँच गया। कितना बज गया? 7 बज गया। आज यहीं पर है, बैकुंठ में पहुँचाया उनके लीला ने। पतला कर मेरी इच्छा थी जो कल हम पूर्णाहुति करके ग्रंथ पूजन करेंगे, नहीं बाबा। तो आज हम लोगों को ये पास ही में होली गेट के अंदर में श्रीवास जी के घर आ देवी काकू भर गदगदयाद्यवाचा जाचे निपत्त भूवि दंडवतोद भटारती आश्य प्रसाद मबुधस्य जनस्य गेत्वा धर्विगे तव गणे गणन विधि अंगश्यामलिम छटा फिरभितो मंदे कृतेंदे वरम जटन जागुडरोचि संग विदधतंग पट्टंबरस्य श्रिया वृंदारण्य निवासिनं हृदिलसद्भ्रामाभिरामोदरं राधास्कंद निवेशितो जलभुजं ध्यायेम भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादि तरंग मध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदे। भवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं नानतोऽस्मि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नय माम चर। भगवतामृत के संबंध में हमने चतुर्थ अध्याय में ये बतलाया, शिवलोक में सदाशिवलोक में विष्णु पार्षदों के सहित गोप कुमार का भेंट हुआ और उन्होंने उनको बहुत से उपदेश दिए। उनको उपदेश दिया, विशेष करके उनको ये बतलाया जो वैकुंठ में जाने के लिए मंत्र तुमको नहीं ले जाएगा, यहाँ तक तुम्हारी सहायता कर दिया। वहाँ पर नाम संकीर्तन अब वहाँ पर इन्हें नाम संकीर्तन का उपदेश दिया। वो नाम संकीर्तन करते हुए वृंदावन में पधारे और वहाँ वृंदावन में पधार करके फिर गुरुजी से भेंट हुई, ये बतलाया। और गुरुजी कुछ बतला करके अंतर ध्यान हो गए। अब ये वहीं पर आकर के वो नाम करने लगे जो उनके गुरुजी ने बतलाया। और श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हासी जसोदा तनय प्रसीद श्री वल्लभी जीवन राधिकेश। इस मंत्र को कीर्तन करने लगे। मंत्र जपा जाता है और ये महामंत्र कीर्तन जपनीय चिंतनीय सब कुछ है। ये जोर से कीर्तन करते भावाविष्ट होकर के तन्मय हो जाते और कभी उसी में ऐसा ध्यान लग जाता जो अपने गोपाल देव को देखते जो उनके साथ में आलिंगन इत्यादि कर रहे हैं, उनसे प्रेम पूर्वक वार्तालाप कर रहे हैं। कभी कभी ये भावावस्था में कभी कभी ऐसा होता है। फिर कुछ दिनों के बाद में यमुना के प्रवाह में गिर गए और उसमें बहने लगे। बहते 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 उनको मालूम हुआ जैसे ये उनका शरीर अप्राकृत हो गया और अप्राकृत शरीर से अब वो 14 लोगों को मिनटों में पार कर गए। देवता ऋषि लोग वहाँ पर जो थे उनको प्रणाम करने लगे और देखते देखते वहाँ से भी आगे बढ़ करके सदाशिव लोक में गए और उनको भी प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लेकर के वहाँ जा करके जो बैकुंठ में प्रवेश किया। वहाँ ने देखा वो जो परिकर लोग जो थे नारायण के वो लोग वहीं पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। बस उनसे मिले या वही लोग साथ में ले गए और वहाँ जा करके उनको द्वार पर ही बैकुंठ के द्वार पर बैठा दिए। अभी हम लोग आते हैं, भीतर जा रहे हैं, फिर आपको प्रवेश करें। वो चले गए। अब वहाँ दरवाजे पर बैठ करके वो देख रहे हैं कि दर्शन करने के लिए लोग आ रहे हैं। ऐसे सुंदर सुंदर लोग आ रहे हैं, कोई 2 भुजा वाला, कोई 4 भुजा वाला, कोई 8 भुजा वाला, कोई 1000 भुजा वाला। और उनको देख करके ये समझ यही हमारे आराध्य हैं, नारायण हैं। सबको उठ करके कहते हैं कि जहीं स्तव स्तुति उनकी करते हैं तो ही वो आकर के इनको पकड़ लेते हैं। अरे मैं नहीं, मैं तो उनके दर्शनों के लिए सेवा के लिए जा रहा हूँ। इस तरह से करते हुए उन्होंने देखा कि बंदर भी आ रहे हैं, भालू भी आ रहे हैं और भी लोग आ रहे हैं, जाम्बवान आ रहे हैं। सबको देखा। नारद जी ने पहले कह दिया था यहाँ पर बैकुंठ में कोई भी साधारण बद्ध जीव नहीं है, वहाँ पर बंदर भालू ये सब कुछ नहीं है, ये सभी सच्चिदानंद उनका स्वरूप है और ये लोग सिद्धि प्राप्त किए हुए हैं और भगवान के ये लोग सेवक हैं। जैसे जैसे इन लोगों ने सेवा की है और उसी रूप में इनकी सिद्धि हुई है, उसी रूप में ये प्रभु की सेवा करना चाहते हैं। अब वहाँ पर ये समझ नहीं सके जे ये उनके सेवक हैं कि ये प्रभु हैं, सबसे प्रणाम करते। ऐसे देखते देखते एक एक से विचित्र विभूतियाँ देखी। सभी लोग ऐसे जा रहे हैं मानो जो कुछ सेवा के लिए उत्कंठित होकर के जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद में वही 4 लोग आए, कहा जी अब चलिए। पहले दरवाजे पर गए, देखा वहाँ पर जो प्रहरी बैठे हैं उनको देखा, देख करके कहा जी यही प्रभु हैं। शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए नारायण स्वरूप में मानो बैठे हुए, उनके पास वाले भी हैं वैसे ही रूप। देख करके स्तव स्तुति किया, वो कान में हाथ रख दिए। अरे मैं नहीं, मैं उनका सेवक का सेवक हूँ, हम लोग तो उनके द्वारपालों के द्वारपाल हैं। इन लोगों ने मना कीजिए ये प्रभु नहीं है, प्रभु हम तुमको दिखलाएंगे। फिर दूसरे गेट पर गए, उन्होंने भी ऐसे देखा, उनसे भी वैभव अधिक, उनको भी उन्होंने देख करके प्रणाम करके और कहा ये हमारे प्रभु हैं। उन लोगों ने भी मना किया। ऐसे करते 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 तीसरे चौथे पांचवें सातवें ड्योढ़ी तक पहुँचे। ऐसे विचित्र को देखा, जब बीच में देखा एक भव्य राजभवन है और उसमें देखा श्री भू नीला इत्यादि शक्तियाँ लक्ष्मियाँ उनकी सेवा कर रही हैं प्रभु की। और वे हम लोगों की तो धारणा वैसी है कि जगत में अच्छा से अच्छा कोई देखा राजभवन, इसे बढ़कर तो हमारी कल्पना नहीं जाएगी। उन्होंने देखा ये सुंदर गलीचा है, उसके ऊपर में सिंहासन है, दुग्ध फेनिल्स उस पर बिछाया गया है और एक गोल इधर तकिया है, इधर तकिया है, वो केहुनी ऐसे लगाए हुए बैठे हुए हैं और लक्ष्मी जी उनका पैर पलोट रही हैं। भू और नीला शक्तियाँ चामर कोई व्यजन खुला रहे, कोई पीक दानी लेकर के खड़ी हैं और वहाँ पर उनके जो जितने परिकर हैं वो परिकर लोग सब वहाँ पर स्तव स्तुति कर रहे हैं। विश्वक्षेन नारद जी सुपर्णव इत्यादि सब स्तव स्तुति कर रहे हैं। इस तरह से देख करके ये प्रभु जी को मिलने के लिए आगे बढ़े तो इनके परिकर जो है इनको रोक लिया, ये प्रभु के निकट नहीं जाना चाहिए, इनको दूर से प्रणाम स्तव स्तुति करो, बस यहीं से दर्शन करो। और प्रभु जी ने इनको देख करके प्रसन्न मुद्रा से इनके तरफ में थोड़ा सा मुस्कुरा दिया और ऐसे इसका मतलब कर स्वस्ति भव आपका कल्याण, बस ऐसे दिखला दिया, यही बहुत है। वहाँ किसी भक्त के तरफ में देख करके ऐसा करना ही बहुत है। उनके परिकर ने कहा जिसे और ये कहने हे गोपाल हे गोपाल, उनके मुख मुख से निकाला है वही श्री कृष्ण गोपाल हरे, वही गोपाल को लोगों ने कहा अरे यहाँ पर गोपाल गोपाल नहीं कहना चाहिए, ये स्वयं भगवान हैं, ये गोप जाति के नहीं हैं, ये गैया चुराने वाले नहीं हैं, ये ऐसा काम नहीं करते, ये कभी जगत में लीला धारण कर और कभी कभी ऐसी लीला करते हैं भक्तों के लिए, किंतु ये गैया चराने वाले गोप नहीं हैं, इनको गोपाल मत कहो, ये इनकी क्या है एक तरह से अपमान है। और तुम एक बात करो, तुम हमारे जैसा ही शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि धारण करके और ऐसा भी वो चाहते तो हो जाता, किंतु उन्होंने ग्रहण नहीं किया, इनको बहुत दुख हुआ, आनंद भी हुआ दुख भी हुआ। जब इनको दुख इसलिए हुआ हमारे इष्ट देव तो ध्यान में हमसे मिलते हैं और हमको गले से लगा लेते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बातचीत करते हैं और ये दूर से खड़े केवल मुस्कुरा दिया देख करके और ऐसा कर दिया। जब ऐसा किया तो उनको बहुत आनंद हो रहा है, किंतु थोड़ी देर के बाद में विषाद भी आया, विषाद भी हुआ दुख भी हुआ, जो उनके द्वारा जो मैं चाहता था वो चीज हमको प्राप्त नहीं। दन्य वेश में रहे, गोप वेश में ही रहे, अपना वेश नहीं कहने से भी नहीं पड़ता। थोड़ी देर के बाद में सब परिकर लोग समझ गए कि अब इनके विश्राम का समय है, सब जाने लगे, सब कर कर चले गए, किंतु ये जा नहीं रहे। तो लक्ष्मी जी आकर इनको बतलाया अब आपको जाना चाहिए, इनके साथ में आप भी चले जाएंगे। प्रभु जी ने कहा उसको मुस्कुराते हुए कहा जी देखो मैं कोटि कोटि वर्षों से तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहा था, मैं कितनी बार अवतार लेकर के भक्त के रूप में भगवान के रूप में मैं तुम्हें यहाँ पर लाने के लिए, अपनी सेवा में नियुक्त करने के लिए मैं बहुत दुखी था, इसलिए अवतार लेता हूँ। वामन अवतार है, नृसिंह रूप है, मत्स्य रूप, कुरुमरुम इत्यादि। गया तुम्हारे पास में तो, किंतु तुमने हमारे तरफ में देखा तक नहीं। मैं तो ये चाहता था कि कोई बहाना बस मिल जाए मुझे और तुमको इन भोगों से हटा करके, संसार से हटा करके अपने तरफ ले आऊं। किंतु कोई बहाना भी बनाने के लिए तुमने कुछ ऐसा काम नहीं किया। मैं बहुत दुखी था। तात्पर्य इसका यह है कि हम लोग संसार में भोगों में विषयों में फंसे हुए हैं। एक दो जन्म से नहीं, करोड़ों करोड़ों जन्म से भगवान के भूले हुए हैं। इसमें कभी दरिद्र होते हैं, कभी राजा बनते हैं, कभी सुखी बनते हैं, कभी दुखी बनते हैं, कभी मनुष्य शरीर, कभी देव शरीर, कभी गंधर्व शरीर, कभी ब्रह्मा इंद्र देव भी बनते हैं, और कभी पैखाने के टट्टी के कीड़े भी बनते हैं, कभी मछली, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी सुअर, कभी गधे, कभी भेड़। इस प्रकार से अपने कर्मों का फल भोगते हुए इसी में घूमते रहे हैं, किंतु भगवान के समीप जाने की स्पृहा नहीं होती। अभी जो चीजें हैं संसार में, एक तरह से हम संतुष्ट हैं। क्यों? जैसे मदिरा पान करके एक व्यक्ति नाली में गिर जाए, कुत्ते उसके मुख चाट रहे हों, या पैर उठा करके उसका मुख भी धुला रहे हैं, तभी वो उसको क्या पता है। हमारी भी ऐसी स्थितियां हुई होंगी कितने बार, तभी संतुष्ट हैं। हम यही चाहते हैं कि इसमें रह करके जरा सुखी रहें, हमारे बाल बच्चे सुखी रहें, मैं सुखी रहूं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा दुख आता फिर सुख आएगा। यदि कहें जी अभी तुमको चलना है, जगत को छोड़ करके प्रभु के पास ले जाएंगे, नहीं जाएंगे। क्यों? हमारे बाल बच्चों का क्या होगा, हमने जो इतनी कमाई की है उसका क्या होगा, किंतु उसको तो छोड़ना है, किस तरह से छोड़ने के लिए राजी नहीं। एक सुअर था, घूम रहा था जगत। सुअर क्या करते हैं, खोजते हैं अच्छे अच्छे भोजन, तो उनको अच्छा भोजन मिल जाता है। उसी में मस्त हैं। ब्रह्मा जी आ रहे थे ब्रह्मलोक से, पृथ्वी लोक में आए, देखा एक सुअर है, उसकी 500 सुअरियां हैं और सैकड़ों बच्चे हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े, गंदी जगहों में लेटते हैं, पोटते हैं। उनको देखा, देखते ही देखा, अरे ये तो सुअर नहीं, ये तो इंद्र है। अपने गुरु जी का अपमान किया, इसलिए इसकी ये दुर्गति हुई है। कहा जाए इंद्र तो इंद्र है, सुअर नहीं है, तू हमारे साथ में चलो इंद्रलोक, तो इंद्र है, इंद्रपुरी का राजा। तो उसने केवल देखा ऐसे। ब्रह्मा जी ने कहा जे तुम हमारे साथ में चलो, तो हमारी ये सुअरियां, हमारी जो प्रियाएं हैं और बाल बच्चे हैं, ये इनका क्या होगा, ये हमारे साथ में चलें। कहा जे ये नहीं जाएंगे, तो मैं भी नहीं जाता। इससे बढ़कर के इतना सुंदर कहीं भोजन उधर मिलेगा, उसी में मर। हम लोग भी इसी तरह से हैं। ब्रह्मा जी ने पानी दिया, कमंडलू अप्रोक्षण कर दिया, अरे सचमुच में इंद्र अमृत पीने वाला और यहाँ पर इस प्रकार से हूँ, प्रभु अब हमको अपने साथ ले चले। पहले तो उनको बच्चों को मारा, उनकी बीवी को मारा, सबको मार करके, तभी नहीं गया। सोचा जी हमारे बच्चे मर गए हैं, फिर हमारे बच्चे हो जाएंगे, फिर स्त्रियों को मारना आरम्भ किया, सोचा जी हमारी और स्त्रियाँ आ जाएंगी, नहीं गया। तब उन्होंने अंत में पानी छिड़का, तब उनको होश हुआ। फिर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, उन्होंने उनका शरीर छोड़ा दिया और बैंक लेकर के चले गए। ऐसे हमारी स्थिति है। प्रभु जी कह रहे हैं कि देखो हजारों जन्म से तुमको अपने पास बुलाने के लिए मैं चेष्टा किया, तुम आया नहीं। आज तुमने हमारे ऊपर में बड़ी कृपा की जो तुम आ गए। मैं तुम्हारे लिए गुरु बन करके गया, वैष्णव को भेजा, बीच बीच में तुमको उपदेश दिया, तुम्हारी भक्ति बढ़ाई मैंने, और फिर मैं तुमको ले आया। जैसे भी हो तुम आए, ये हमारे ऊपर में तुम्हारी बड़ी कृपा। हम लोगों के लिए प्रभु ऐसा सोचते हैं, हम लोग समझते हैं कि यही हमारा स्थान है, किंतु हम यहाँ के हैं नहीं। शास्त्र में, गीता में, भागवत में सर्वत्र साधु संत लोग भी बतलाते हैं, समझ में आता नहीं है, इसलिए ये कहते हैं देख करके सुन करके। उन्होंने कहा जे तुम अब हमारी सेवा में रहना। अंत में कुछ दिन रहते 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 लक्ष्मी जी की कृपा से उनको चामर बेजन का एक सेवा मिल गया, बड़े प्रेम से करते थे, किंतु मन में बड़ा दुख रहता, प्रभु की कोई डायरेक्ट सेवा नहीं कर पाता, प्रभु हमसे मिलते नहीं, हंसते नहीं। एक दिन उन्होंने देखा जैसे वहाँ पर जितने उनके परिकर थे वो सब गोप कुमार बन गए और हाथों में बंसी लेकर के बंसी की पाँप बजाने लग गए। इन्होंने उनके साथ में अपनी बंसी की तान छेड़ दी, बंसी की तान छेड़ दी, इतना सुंदर सुरीला बजाया कि नारायण मुग्ध हो गए, लक्ष्मी जी भी मुग्ध हो गए। कहे तुम अब ये बीच बीच में हमको सुना, किंतु खुद बंसी नहीं लिया न बंसी बजाया, उसी ऐश्वर्य वेश में रहे। अब कभी दुखी होते कभी सुखी होते, सुखी किस लिए कि ये हम नारायण मिल गए, इनसे बढ़कर के और कौन होगा, और इसे बढ़कर के कोई धाम नहीं हो सकता। जितने धाम देखे उसमें सबसे यही श्रेष्ठ धाम है और यही रूप सबसे श्रेष्ठ है, किंतु दुखी इसलिए रहते जब उनसे वो गले नहीं मिलते, हंसते नहीं, इनके साथ में टहलते नहीं, अपनी सेवा में नहीं लगाते, एक साथ में अपने पलंग पर नहीं बैठाते, एक साथ में खाते पीते नहीं, इसलिए दुखी रहते। एक दिन बाई चांस नारद जी आ गए, नारद जी को इन्होंने प्रणाम किया, नारद जी ने इनको आशीष दिए। नारद जी को किसने भेजा?
प्रभु ने भेजा,
प्रभु ने। ये विश्वास रखो यदि हम शुद्ध रूप से भजन करते हैं कोई कामना वासना नहीं है, कोई भी कामना वासना, बस उनकी सेवा की हम बस कामना करते हैं और हमने आत्मसमर्पण कर दिया है प्रभु में विश्वास के साथ में, खाना पीना रहना जाना सब आपके हाथों में दे दिया, अनकंडीशनली सरेंडर कर दिया, कोई कंडीशन नहीं। यदि ऐसा हम आत्मसमर्पण कर देंगे गुरु जी के चरणों में भी, कोई छिपाने के लिए कोई चीज न रहे, हम कोई कामना और नहीं करते हैं, बस प्रभु की सेवा मिल जाए, तो उसकी सारी व्यवस्था वो स्वयं ले लेते, इसी का नाम है आत्मसमर्पण। भजन राज्य में एक गाय को बेच देते हैं, ये गाय नहीं कहती कि मैं तुम्हें दूध नहीं दूंगी, जिसके यहाँ चली गई गाय उसके यहाँ उसी नाद पर खाती है और वहीं पर अपना दूध देती है, कभी नहीं कहती कि मैं नहीं। ठीक ऐसे ही आत्मसमर्पण में हो, प्रभु पर पूरा विश्वास रखे, अपना सब कुछ उस पर छोड़ दे, मैं अपनी जीवन को अपने आप खुद पालन पोषण कर रहा हूं, ये भाव रहा तो प्रभु पर क्या रहा। कोई कष्ट आ गया, बिलबिलाने लगे, मरे रे दूसरों के इसमें चले गए, हमारी रक्षा करो रक्षा करो, प्रहलाद महाराज ने की, शरणागत लोग ऐसा नहीं करते। तो इस तरह से रहे, अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मात् धनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुक्तम। अभी हम लोगों में कमी है इसलिए ऐसा नहीं, प्रभु देखते हैं कि अपने कर रहा है, प्रभु करवा रहे हैं सब कुछ है, किंतु ये अहंकार पूर्ण आत्मा करता हम इतनी मानने थे, अपने को करता मान, भजन मैं कर लूंगा, भगवान पर गुरु पर वैष्णव पर नहीं छोड़ता, मैं कर लूंगा, शरीर का पालन पोषण मैं कर लूंगा। तो मैं कर रहा था, कर लाखों कोटि जन्मों से कर रहा है, तुम भी अब फिर कर, नहीं देखे। इसलिए नारद जी को भेजा किस लिए? वो तो ऐसे समर्पित आत्मा है, उनके लिए भेजा। नारद जी वहां पर पहुंचे, नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, जी इस बैकुंठ में तो कोई दुखी नहीं होता, तुम यहाँ पर देखते हैं तुम कुछ चिंतित सा है, यहाँ पर चिंता की कैसे बात, मत चिंता करो यहाँ। नारद जी जानते हैं कि नहीं किस लिए चिंता है इसकी? जानते हैं, वहां पर तो सभी सच्चिदानंदमय लोग हैं, कोई भी नीचे, ये भी है, ये भी सच्चिदानंदमय और नारद से उच्च अधिकार वाला है। अभी नारद जी के यहाँ पढ़ रहा है, किंतु है अधिकार कैसा, उनसे भी उच्च अधिकार, वो सख्य भाव का है। नारद जी समझते हैं किंतु प्रकट अभी नहीं कर रहे। अरे तुम क्यों दुखी है भाई यहाँ? तो बहुत दुखी होकर के इनके चरण पकड़ लिए और बोला, प्रभु आप क्या नहीं जानते हैं, आप सभी जानते हैं, अब फिर मुझसे कह रहे हैं, मेरे मन की मुराद पूरी नहीं हुई, आशा नहीं हुई। मैं चाहता था कि ये प्रभु के, आप इसे मैं देखता हूं कि कोई बड़ा धाम भी नहीं है, प्रभु भी नहीं, और किंतु फिर भी मेरी आशा न जाने क्यों नहीं मिट रही। मैं चाहता था जैसे स्वप्न में या स्फूर्ति में हमारे प्रभु, हमारे गोपाल देव जी जैसे हमसे बातचीत करते हैं, प्रेम से आलिंगन करते हैं, प्रेम भरी बातें करते हैं, वैसे ये व्यवहार करते हैं, ये संभव। उन्होंने कहा ये यहाँ पर नहीं होगा, और उन्होंने ऐसे देखा, ऐसे देखा, किस लिए? कहीं लक्ष्मी जी तो नहीं है? लक्ष्मी जी सुनेंगी ये बात को तो वो चिढ़ जाएंगे, इसलिए वो एकांत में ले गए, और एकांत में लेकर देखा जो कोई सुनने वाला नहीं है, तब उसे कहने लगे। द्वारकापुरी में रह करके कोई ब्रज की महिमा प्रकाश करे और रुक्मिणी सत्यभामा जी यदि सुन लें तो क्या होगा, बिगड़ नहीं जाएंगे? ये मथुरापुरी की हम यहाँ रह रहे हैं, और हम कहें जैसे वृंदावन के चरणों में, वृंदा जी के चरणों में ये मथुरा कोटि कोटि गुण अधिक श्रेष्ठ है वृंदावन, तो मथुरा जी क्या करेंगे, उनका मन कुछ खराब होगा कि नहीं? यहाँ के परिकर जो हैं वो क्या करेंगे? तो तुम यहाँ क्यों है, तो जा निकाल देंगे। यदि हम वृंदावन में गए और ये श्लोक पाठ कर रहे हैं, शिविंदा विपिनम सुरम्यम अपतस श्रीमानसी गोवर्धन सारास्था राशास्थलिका पलम रसमय किंतावत अन्नस्थले जस्यापि अंश लवेन नारहत सम्यं मुकुंदस्य तत् प्राणोद्भदिक प्रियव तत्कुंडम एवं अहम आश्रया। वृंदावन समस्त धामों में श्रेष्ठ है, वृंदावन से बढ़कर के और कोई नहीं। वृंदावन सुरम्यम अपतस श्रीमान स गोवर्धन, इसे भी श्रेष्ठ गिरिराज गोवर्धन है, कहीं भी चले जाओ गोवर्धन में 14 माइल के अंदर में परिक्रमा के कहीं भी, वो वृंदावन से श्रेष्ठ। तस्मान स गोवर्धन साराशा स्थलिका फलम, वृंदावन में और गोवर्धन में राश स्थलियां हैं, जैसे चंद्र सौर इत्यादि हैं, और सब कितनी राश स्थलियां हैं गोवर्धन में, वृंदावन से अधिक सुरम्य है। रसमयी अत्यंत रसमयी राष्ट्रस्थलियाँ हैं, वृंदावन राष्ट्रमय स्थल है, किंतु वृंदावन की महिमा को कोटि कोटि गुणित कर दिया जाए तो भी राधा कुंड के एक कोटि कोटि भाग के एक बराबर भी नहीं होगा। वृंदावन में आप वहाँ पर कहिए कैसा लगेगा, तो यहाँ पर क्या हो, जाओ वहाँ। इसलिए जब जैसा जहाँ रहना चाहिए उसके ऊपर में निर्भर करके, यदि तुम ऐसा नहीं चाहते तो मन के भीतर में रखो, मत प्रकाश करो, वहाँ की प्रशंसा करो, नारद जी ने इनको कह दिया था, वैकुंठ में जाएगा तू, पहले बतलाया था कर, या उनके गुरु जी ने बतलाया हो, जब जाना वहां पर खूब सावधानी से रहना और खोल करके सबसे बातें मत करना। ये यदि यहीं पर हम मथुरा की चारों तरफ में निंदा करने लगे, यहाँ पर क्या पाठ करो? मथुरापुरी मथुरापुरी है, ब्रह्मांड में इसके समान और कोई धाम? द्वारकापुरी में बहुत सी कृष्ण की लीलाएं हैं, किंतु जन्मलीला है? जन्मलीला नहीं। इसलिए विशेष करके ब्रज एव राजित तराम, इसी मथुरापुरी के अंदर में, मथुरा मंडल के अंतर्गत में ब्रज है जहाँ उनकी मधुर लीलाएं होती हैं, इसलिए मथुरा को मैं ये सब कहना चाहिए, जिस रूप में हो उस रूप में चलना चाहिए। कोई एक व्यक्ति है वैष्णव है, बहुत ही उन्नत श्रेणी के, उनसे कहो आप बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, बहुत भजनशील हैं, किंतु वो जो है ना उनके आप पासंग में भी नहीं है, वो आपसे बहुत श्रेष्ठ हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूं, तो वो क्या उनका मन ठीक रहेगा? इसलिए उनको अलग लेकर के और उसकी महिमा का वर्णन करने लगे। देखो नमीन, देखो कौन आया है, देखा अगल बगल में और लक्ष्मी जी नहीं है तो उनसे बतलाना है। देखो अब इसे श्रेष्ठ धाम नहीं है, तुम जानते हो, यह बात ठीक है, इसे बढ़कर के और श्रेष्ठ धाम नहीं है, और प्रभु मिल गए इनसे भी बढ़कर के और कोई परतत्व नहीं है, किंतु तुम्हारा मन शुष्क है, दुखी है, खोल करके बतलाओ क्या बात है। जैसे आपसे भी खोलना है कुछ बाकी है, आप सभी जानते इस जगत में हम अपने गुरु से ऐसे कहें जैसे आप तो सभी कुछ जानते हैं, ठीक है, किंतु मध्यम अधिकार का यदि गुरु है या कनिष्ठ अधिकार के गुरु हैं तो वो सर्वांतर्यामी थोड़े हैं, अभी उनको भगवान के समान उनको मानो, ये बात तो यहाँ तक तो ठीक है, भगवान का ही स्वरूप मानो, समझो न अमान्य तकर है जीत, उनका कभी भी अपमान अवज्ञा मत करो, ये तो ठीक है, किंतु इस जगत के साधन में तारतम्य है, सभी तो नारद ऋषि नहीं है, रूप सनातन नहीं है, यदि हमारा वैसा साधन होगा तो वैसे मिलेंगे, इसलिए उनसे यदि हम ऐसा ही कहें जैसे आप अंतर्जामी हैं, आप सभी जानते हैं, भाई वहां पर यह बात नहीं चलेगी, यह बातें हमको नहीं कहनी चाहिए, तभी मैं कह रहा हूं अपने कल्याण के लिए, आप लोगों के कल्याण, उनसे हृदय में साफ साफ कहो यदि सचमुच वो सदगुरु हैं और सचमुच में तुम शिष्य है, तो वैसे आत्मसमर्पण करके अपने हृदय की बातें जितनी हैं उनसे कहो और सुनो। ददाति प्रतिग्रहणाति गोम्याख्याति पृच्छति भुंते भोजते चैव सर्वविधं प्रतिलक्षणं, ऐसे संग होता है, तुम अपना अलग बैलेंस रखेगा, गुरुजी अलग रखेंगे, तुम अपनी भावना रखेगा, तुम अपने मन से चलेगा, वहां पर साधन भजन एक सजातीय होना चाहिए, सजातीय स्निग्ध एक आशय का होना चाहिए, उसमें प्रीति रहती है, उसमें खोल करके देखते हैं कि जैसे बछड़े को दूध पिलाती है गैया, ऐसे वो पिलाएंगे बड़े प्रेम के साथ में, और यदि विरुद्ध भाव है परस्पर तो ये संभव। अब नारद जी उनके कुछ समभाव वाले मिले, एक है नारद जी और ये इनका भाव है, अभी स्वरूपतः एक नहीं है, किंतु नारद जी भी कम नहीं है, नारद जी ही मधुमंगल है ऐसा समझो, इसलिए सखरस में भी वो मधुमलंगल हैं और ऊपर से दास्य बने हुए हैं, वैकुंठ तक में दास्य भाव, और वही माने समझे मधुमंगल ही नारद बने हुए, नारद ही मधुमंगल नहीं बल्कि मधुमंगल ही अपने एक अंश से नारद इत्यादि बने, और मधुमंगल रूप में रहते हुए भी नारद रूप में भी वो हजारों रूप धारण कर सकते हैं और अपने प्रभु की सेवा कर सकते हैं, जैसे कृष्ण लाखों रूप धारण कर सकते हैं ये भी लाखों रूप धारण कर सकते हैं नारद जी। इसलिए जहां जहां गए सब जगह नारद को देखा, किंतु नारद की प्रकृति में अंतर आता गया। स्वर्गलोक में जो नारद जी हैं वो वैकुंठ के नारद जी से एक ही व्यक्ति जैसे तो एक ही दिखते हैं, किंतु भावना एक नहीं है। अब यही नारद जी यदि वृंदावन में नारद कुंड में मिल जाएं गोवर्धन के पास वाले, तब वो कैसे रहेंगे? यही मधुमंगल के रूप में लेंगे इनका रूप। वही राधा जी लक्ष्मी हैं, वही सत्यभामा हैं, किंतु अपने अपने स्थान पर उनका जो प्रकाश है उसके अनुसार में काम करता है, राधा जी जैसा नहीं करेगा। इसलिए स्वजातीय स्निग्ध आशय अपने से श्रेष्ठ गुरु या वैष्णव का संग करने से साधन भजन में उन्नति होती है, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए नारद जी मिल गए, नारद जी मिल गए, कृष्ण ने ही उनको संग मिला दिया। नारद जी हंस करके कहने लगे, उनसे बातें करने लगे, आपको यहां पर प्रसन्नता नहीं होगी, कागज उड़ गया, यहां पर प्रसन्नता नहीं होगी, ये तुमसे उस प्रकार से नहीं मिलेंगे जैसे गोपाल जी मिलते हैं, इसी में संतुष्ट रहो और अपने इष्ट देव से इनको अभिन्न समझो, तत्वता कोई भिन्नता नहीं है, कृष्ण